ایران رادیو پادکست. روزویل اسٹریٹ پوڈکاسٹ کا یہ آٹھواں ایپیسوڈ ہے. ایران ریڈیو سے میں ہوں سید میثم عباس. اگر آپ دوسرے دلچسپ وشوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi پر وزٹ کر سکتے ہیں. سن 1979 میں ستمبر کے مہینے میں تہران وشودیالیہ کے اسلامک چھاتر سنگھ کے کاریالیہ میں ایک مہتوپورن بیٹھک ہوئی. اس سنگھ کی کیندریہ پریشد کے 7 سدسیوں میں سے 5 سدسیہ میٹنگ میں موجود تھے. یہ لوگ وبھن وشودیالیوں کے چھاتر تھے جو گہری چنتاؤں اور کرانتیکاری آدرشوں کے ساتھ امریکی سرکار کی نیتیوں کے خلاف ایک سمنوت رخ اپنانا چاہتے تھے. بعد میں ایرانی اتہاس میں امر ہونے والے ان چھاتروں کے نام تھے 24 ورشیہ ابراہیم اصغر زادے، شریف یونیورسٹی میں اودیوگک انجینئرنگ کے چھاتر جو مشہد سے تہران آئے تھے، یزد کے رہنے والے 23 سال کے حبیب اللہ بھی طرف تہران وشودیالیہ میں سول انجینئرنگ کے چھاتر، اصفہان کے 26 ورشیہ محسن میر دامادی پالی ٹیکنک وشودیالیہ میں سول انجینئرنگ کے چھاتر، گرمسار کے رہنے والے 22 سال کے محمود احمدی نژاد وگیان ایوم پرودیوگیکی وشودیالیہ میں سول انجینئرنگ کے چھاتر، 24 ورشیہ سید محمد علی سیدی نژاد قمے تربیت معلم وشودیالیہ میں گڑت کے چھاتر. اس بیٹھک کا وشے تھا کہ ایران میں اسلامی کرانتی کے مد نظر امریکی نیتیوں کا ورودھ کیسے کیا جائے، لیکن کسی بھی سدسیہ کے من میں کوئی اسپشٹ وچار نہیں تھا. بیٹھک آیوجت کرنے کا ایک ماتر ادیش ایران کے آنترک معاملوں میں امریکی ہستکشیپ کو لے کر چھاتروں کا گہرا آکروش اور چنتا تھی. یہ آکروش محمد رضا پہلوی کے امریکی دھرتی پر سویکار کیے جانے کے بعد اور بڑھ گیا تھا. یہ سمجھنے کے لیے کہ اس آندولن نے یہ روپ کیسے لیا، ہمیں سب سے پہلے یونٹی کنسولیڈیشن آفس نامک ایک چھاتر سنگٹھن کے گٹھن کی پرکریا پر ایک نظر ڈالنا ہوگی. یہ ایک نیا سنگٹھن تھا جس کی استھاپنا اس بیٹھک سے صرف 2 مہینے پہلے ہوئی تھی. یہ سنگ چھاتروں کی اس چنتا کا پریڑام تھا جس میں وہ ایک طرف وامپنتھی اور ادھاروادی چھاتروں اور دوسری اور اسلامی کرانتی کے نیتا سے سمبندھ نہیں رکھنے والے مسلم چھاتروں سے الگ اپنی پہچان بنانا چاہتے تھے اور وشودیالیوں میں مسلم اور کرانتیکاری چھاتروں کی گتیویدھیوں کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے. 1979 کے وسنت اور گریشم کال میں تہران وشودیالیہ شریف وشودیالیہ اور تہران پالی ٹیکنک کے اسلامی سنگھوں نے نئے قانونوں کا مسودہ تیار کر لیا. ایران میں اسلامی چھاتر سنگھ 1979 کی کرانتی سے پہلے سے موجود تھے، لیکن کرانتی کے بعد ان سبھی سنگٹھنوں کو پنرستھاپت اور سنشودھت کرنے کی ضرورت تھی. اسلامی کرانتی کے بعد اس سنگٹھن کا ادیشیہ اسلامی کرانتی کے نیتا کے پرتی دھارمک رجحان رکھنے والے چھاتروں کو سنگٹھت کر کے وشودیالیوں پر کمیونسٹوں کے ایکادھیکار کو توڑنا تھا. حالانکہ کچھ وشودیالیوں میں اس کا چھاتر سموہ انیواریہ روپ سے ایک روپ نہیں تھا. مریم قجر ازودان لو جیسے لوگوں کے نام بھی ان کے پرمکھ سدسیوں کی سوچی میں موجود تھے. آج ہم جس مہیلا کو مریم رجوی کے نام سے جانتے ہیں وہ اسلامی گڑتنتر ایران کے ورودھی سموہوں میں سے ایک ایم کے او کی نیتا ہیں. اسلامک اسٹوڈینٹس یونینوں میں شامل ہونے والے چھاتروں میں کچھ سامان وشیشتائیں تھیں جو انہیں انیہ چھاتر سموہوں سے الگ کرتی تھیں. ان میں سے ادھیکانش چھاتروں نے 1974 کے بعد وشودیالیوں میں پرویش لیا تھا جب وشودیالیہ شکشا نشلک ہو گئی تھی اور سماج کے مدھیم اور غریب ورگ کے چھاتر بھی وشودیالیوں میں پرویش لے سکتے تھے. اتیت کے وپریت یہ چھاتر دھارمک اور مدھیم یا غریب پریواروں سے آتے تھے. दूसरी सामान्य विशेषता इनके राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में खोजी जानी चाहिए। हालांकि इस्लामी संघों के सदस्य धार्मिक और शरिया के प्रति प्रतिबद्ध थे, फिर भी उनमें वामपंथी प्रवृत्तियां भी थीं। इस वामपंथ का अर्थ समाजवाद या साम्यवाद नहीं था, बल्कि रूढ़िवाद से बचना और निर्णायक एवं क्रांतिकारी कदम उठाना था। ये प्रवृत्ति क्रांति के बाद के शुरुआती महीनों के क्रांतिकारी माहौल और उस समय के प्रमुख राजनीतिक साहित्य के प्रभाव में बनी थी। इस्लामी संघों के सदस्यों की तीसरी प्रमुख विशेषता दलीय संबद्धताओं से उनकी दूरी थी। ये छात्र इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी या इस्लामिक क्रांति के मुजाहिदीन संगठन जैसे राजनीतिक दलों और समूहों से स्वतंत्र होने पर अड़े थे। ये स्वतंत्रता उनकी क्रांतिकारी पहचान को बचाए रखने और दलीय प्रतिद्वंदिता में फंसने से बचने की उनकी इच्छा में निहित थी। उन्नीस की गर्मियों की विश्वविद्यालयों की छुट्टियां अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस्लामी संघों का ढांचा फिर से खड़ा कर दिया गया। कई विश्वविद्यालय पहली बार अपनी केंद्रीय परिषदें भी बना पाए। अब समय आ गया था कि देश के विश्वविद्यालयों के इस्लामी छात्र संघ अपना राष्ट्रीय संघ स्थापित करें। 12 मई 1979 को पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयों के मुस्लिम छात्रों की एकता को मजबूत करने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश भर से इस्लामी संघों के प्रतिनिधि नए छात्र संगठन पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा हुए। इस सेमिनार में भाग लेने वालों ने यूनिटी कंसोलिडेशन ऑफिस की 7 सदस्यीय केंद्रीय परिषद का चुनाव किया। इब्राहिम असगरजादे, रहीम बातेनी, हबीबुल्ला बीतरफ, फरीद सलमानियान, सैयद मोहम्मद अली सैयदी निजाद, मोहसिन मीरदामादी और महमूद अहमदी निजाद छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। एक हफ्ते बाद 19 मई को छात्र प्रतिनिधि ईरान में इस्लामी क्रांति के नेता इमाम खुमैनी को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देने के लिए कुम गए। इस प्रकार यूनिटी कंसोलिडेशन ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। छात्रों की मुख्य चिंताओं में से एक इमाम खुमैनी के मार्ग की अवधारणा को समझाना और क्रांतिकारी नेता के साथ संवाद कैसे करें ये बताना था। वो इमाम खुमैनी के साथ एक मजबूत दो तरफा संबंध स्थापित करना चाहते थे ताकि उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और उन्हें विश्वविद्यालयों में हो रहे विकास की जानकारी दे सकें। सितंबर 1979 की शुरुआत में आयोजित कई बैठकों में छात्रों ने इस सवाल का जवाब ढूंढा, इमाम खुमैनी का मार्ग क्या है और क्रांतिकारी छात्रों के बीच बिखराव और फूट को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने इसका पता लगाने के लिए 5 लोगों से संपर्क किया, अबुल हसन बनी सदर, हसन हबीबी, सैयद अली खामेनेई, मोहम्मद मुश्तहिद शबिस्तरी और सैयद मोहम्मद मुसवी खुएनिया। इन 5 लोगों के जवाबों में विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई दी। सैयद अली खामेनेई का मानना था कि इमाम खुमैनी का मार्ग निर्भरता से मुक्ति पर आधारित है। राजनीतिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता और बौद्धिक व सांस्कृतिक निर्भरता। राजनीतिक निर्भरता से मुक्ति सबसे आसान और सबसे कम समय में हासिल हो सकती है, जबकि बौद्धिक निर्भरता से मुक्ति अन्य मामलों की तुलना में अधिक समय ले सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी क्रांति ने अमेरिका पर राजनीतिक निर्भरता को मूल रूप से समाप्त कर दिया और इमाम खुमैनी का मार्ग आर्थिक और सांस्कृतिक निर्भरता को भी खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ अबुल हसन बनी सदर का मानना था कि क्रांति के बाद भी अमेरिका पर निर्भरता बरकरार है। उनका मानना था कि ईरान की राजनीतिक संरचना अभी भी अमेरिकी है और इमाम खुमैनी के दृष्टिकोण को स्वतंत्रता, विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के विस्तार पर निर्भर बताया। हालांकि सैयद अली खामेनेई और मुसवी खुएनिया आज़ादी को सशर्त मानते थे, असीमित नहीं, यानी साजिश रचने की स्वतंत्रता, अपमान करने की स्वतंत्रता, जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की स्वतंत्रता और इसी तरह की अन्य चीज़ें अस्वीकार हैं और सरकार को उनका मुकाबला करना चाहिए। यूनिटी कंसोलिडेशन ऑफिस के सदस्यों ने जनाब खामेनेई और मुसवी खुएनिया के विचारों को बनी सदर के विचारों पर तरजीह दी। वो ऐसी आज़ादी को जो अमेरिका पर निर्भरता की ओर ले जाती है या बौद्धिक निर्भरता को बढ़ावा देती है, इमाम खुमैनी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत मानते थे। अक्टूबर 1979 के अंत में यूनिटी कंसोलिडेशन ऑफिस की केंद्रीय परिषद की एक बैठक में इब्राहिम असगरजादे ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने का विचार रखा। वो अमेरिका की गुप्त साजिशों और 19 अगस्त 1953 के तख्ता पलट की पुनरावृत्ति की संभावना से चिंतित थे। मेहराबाद हवाई अड्डे से गोपनीय अमेरिकी दस्तावेजों के निकलने की प्रेस में छपी खबरों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया था। असगरजादे ने सुझाव दिया कि छात्रों को अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लेना चाहिए और कुछ देर वहीं धरना देना चाहिए ताकि अमेरिकी नीतियों के खिलाफ ईरान के विरोध की आवाज़ दुनिया भर में सुनी जा सके। सदस्यों में महमूद अहमदिनेजाद और सैयद मोहम्मद अली सैयदिनेजाद ने इसका विरोध किया। अहमदिनेजाद का मानना था कि ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर है और अंतरिम सरकार के पतन का कारण बन सकती है। सैयदिनेजाद ने कानूनी प्रक्रियाओं की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये कार्रवाई इस्लामी छात्र संघों के कर्तव्यों से बाहर है। इन आपत्तियों के कारण दूतावास पर कब्जा करने के विचार को यूनिटी कंसोलिडेशन ऑफिस के एजेंडे से हटा दिया गया। हालांकि तीन अन्य सदस्यों ने विपक्ष की नज़रों से दूर स्वतंत्र रूप से इस विचार को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से कब्जा करने के विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें इसकी योजना बनाने और इसे क्रियान्वित करने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने समूह में अन्य लोगों को भी शामिल किया। इस्लामी छात्र संघों के विश्वसनीय छात्रों से बने थिंक टैंक के अलावा दो अधिकारियों को भी इस ऑपरेशन के बारे में सूचित किया गया। एक थे सैयद मोहम्मद मूसवी खुवैनिया, जिन्हें छात्र एक विश्वसनीय धर्मगुरु मानते थे और जो इस ऑपरेशन को इमाम खुमैनी के कार्यालय से जोड़ सकते थे, और दूसरे थे मोहसिन रिजाई, जो IRGC की खुफिया इकाई के प्रमुख थे, जो छात्रों का समर्थन कर सकते थे और दूतावास को तूदे पार्टी या पीपल्स मुजाहिदीन जैसे अन्य समूहों के हस्तक्षेप से बचा सकते थे। मूसवी खुवैनिया ने सुझाव दिया कि योजना के क्रियान्वयन से पहले इमाम के ध्यान में ये बात न लाई जाए, क्योंकि नेतृत्व की जिम्मेदारियों के कारण वो इसका विरोध कर सकते हैं। ये तय हुआ कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद वो इमाम को घटना की जानकारी देंगे और उनकी राय पूछेंगे। मोहसिन रजाई का मानना था कि अगर IRGC की खुफिया इकाई ने दूतावास की सुरक्षा नहीं की होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ये भी संभव था कि अमेरिकी दूतावास के दस्तावेज और रिकॉर्ड KGB के हाथों लग जाते, दूतावास के कई कर्मचारी मारे जाते और दूतावास पर कब्जे का राजनीतिक प्रबंधन छात्रों के हाथों से छीन लिया जाता। दो और तीन नवंबर को सावधानी पूर्वक योजना तैयार की गई। छात्रों को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सटीक विवरण की आवश्यकता थी। दूतावास का नक्शा तैयार करना, प्रदर्शन की शैली, परिसर और फिर दूतावास की इमारतों में कैसे प्रवेश किया जाए, अमेरिकी मरीन का सामना कैसे किया जाए और यहाँ तक कि बाहर जमा होने वाली भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सभी के लिए सावधानीपूर्वक योजना की ज़रूरत थी। कई छात्रों ने अमेरिकी दूतावास के परिसर की रेखी शुरू कर दी। कभी वे अपने कदमों की गिनती करके दूतावास की दीवारों को नापते थे तो कभी वे आसपास की ऊंची इमारतों में जाकर परिसर और उसकी इमारतों का स्थान निर्धारित करते थे। वे दूतावास के अंदर परिवहन के तरीकों का आकलन करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने के बहाने दूतावास के काउंसलर भवन भी गए। इस टोही मिशन में छात्रों को सही ढंग से एहसास हुआ कि मुख्य दूतावास भवन में घुसना इतना आसान नहीं है। कई छात्र रसद विभाग में भी सक्रिय थे। उन्हें योजना को अंजाम देने के लिए आवश्यक सभी उपकरण तैयार करने थे। लोहा काटने वाला उपकरण, वर्दी वाले बाजूबंद, इमाम खुमैनी की तस्वीर वाले प्ले कार्ड और दूसरी ज़रूरतों का सामान। इसके अलावा जिन छात्रों के पास कैमरे थे या जो कैमरा चलाना जानते थे, उन्हें ऑपरेशन के सभी चरणों को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी दी गई। नियंत्रण योजना के मूल में ये बात थी कि इतने बड़े पैमाने की योजना के लिए उन्हें विश्वसनीय छात्रों की मदद लेनी होगी और प्रत्येक व्यक्ति और समूह के कार्यों को सावधानीपूर्वक निर्धारित करना होगा। 4 नवम्बर 1979 की सुबह 6:30 बजे तेहरान विश्वविद्यालय, शरीफ विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय और नेशनल विश्वविद्यालय में 1-7-4 ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए गए। ये सेशंस विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए गए ताकि इस तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। इन सेशंस के दौरान छात्रों को पहचान पत्र दिए गए और प्रत्येक समूह के कार्यों के बारे में बताया गया। ये कार्य विश्वविद्यालयों के आधार पर सौंपे गए थे। शरीफ विश्वविद्यालय दूतावास परिसर और इमारतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। तेहरान विश्वविद्यालय बंधकों की रसद सहायता और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। नेशनल विश्वविद्यालय बंधकों की सुरक्षा में सहायक बल के लिए जिम्मेदार था। पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय गोपनीय दस्तावेजों को एकत्रित करने और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इस तरह से क्रांतिकारी लक्ष्यों और दो दिवसीय धरने के विचार के साथ छात्रों ने खुद को एक ऐसे अभियान के लिए तैयार किया जो ईरान के समकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गया। उनमें से किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि आने वाले कुछ घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।